السلام عليكم،
Recording in progress.
क्या हाल है आपका؟ आपकी क्लास आज
Recording
पढ़
in progress.
लेते हैं, अक्षर मुबशर वाली क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिह लजीन अस्तफा, अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाह मिन अश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اشرح مبشرہ میں سے ہم 10ویں صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے. پچھلے دو کلاسز میں ہم نے شام کی فتح کے متعلق کچھ بڑی پیاری پیاری باتیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں تھیں تو وہ ڈسکس کریں. آپ لوگوں کو ہم نے یہاں تک بتا دیا تھا کہ شام کا جو ایک اینڈ بنتا ہے جس کو فلسطین کہتے ہیں، تو اس کے اندر جو سب سے اہم شہر ہے بیت المقدس کا، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی قبلہ اول ہونے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی اہم جگہ ہے. جیسے مکہ مکرمہ وہ قبلہ ثانی تو ہے، لیکن ویسے تو مسلمانوں کا آدم علیہ السلام سے لے کر کے تو قبلہ اول بیت یہ کعبۃ اللہ ہی تھا، مکہ مکرمہ ہی تھا. پھر بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت المقدس کو بنا دیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد واپس مکہ مکرمہ کو قبلہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں شہر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ہمارا تیسرا حرم جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے. تو یہ تین حرمین، ٹھیک ہے؟ بیت المقدس کا بھی اپنا ایک حرم ہے، جو وہ کمپاؤنڈ ہے نا جس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، وہ وہاں کا حرم ہے. ہمارا حرم جو ہے وہ آپ کو شاید مکہ مکرمہ کے بارے میں بتایا ہوگا نعمان انکل نے کہ کس نے حرم ڈٹرمنٹ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں حرم کی باؤنڈریز کیا ہیں. شاید آپ کی بات بتا نہیں یا مجھے بتا نہیں، کسی نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ جی یہ مکہ مکرمہ میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایسے جو ہے نا یہ حرم کی باؤنڈری ہے. اسی کو حل بھی کہتے ہیں، حل، ٹھیک ہے؟ وہ جو مسجد عائشہ ہے نا جہاں پہ ہم جا کر کے احرام باندھتے ہیں جب دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے مکہ مکرمہ جا کر کے، تو مسجد عائشہ جو ہے وہ حل کی باؤنڈری کے اوپر ہے. اسی طرح اس کے اور بھی مقامات ہیں حل کی باؤنڈری کے. تو یہ ایک پورا ایک گویا کہ ایک سرکل شیپ میں تو شاید نہیں ہوگا، لیکن اس طرح سے ایک سراؤنڈ کرتا ہے. اگر آپ نے ہوٹل سے احرام کی چادریں پہن لی ہوں اور آپ نے دو رکعت جو ہے وہ احرام کی نفل بھی پڑھ لیو، تو اب آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ بس آپ جائیں اور ہل کی باؤنڈری سے جو ہے نا وہ باہر نکلیں اور واپس آ جائیں، تلبیہ پڑھ کر کے نیت کر کے آپ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، بیکاز آپ پہلے ہی دو رکعت پڑھ چکے ہیں اور آپ جو ہے وہ احرام کی چادریں وغیرہ بھی پہن چکے ہیں، تو اس طرح سے بھی آپ دوبارہ سے پھر احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں اور جا کر کے اب آپ پھر عمرہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال شام کی فتح، اس میں ایک بہت بڑی جنگ، میجر، ون آف دا میجر میجر بیٹلز ان ہسٹری، ناٹ جسٹ اسلامک ہسٹری بلکہ ورلڈ ہسٹری، ٹھیک ہے؟ تو ان میں جنگ یرموک جو ہے نا وہ بہت میجر بیٹل کے طور پر کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ باتیں جنگ یرموک سے پہلے کی بتائی تھیں کہ مسلمانوں کا آپس میں مشورہ کیسے ہوا، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی بات جنگ یرموک سے پہلے کی کہ ان کا جو ایمبیسڈر یا قاصد آیا تھا بلکہ جارج کے نام سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جارج آیا اور اس نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو نماز ہی سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظر گیا ہے. تو انہوں نے پھر سورہ نساء کی آیات پڑھ کر کے سنائی، تو وہ تو ادھر ہی مسلمان ہو گیا نا جارج. لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ابھی واپس چلے جاؤ، تو وہ تو چاہتا تھا کہ میں واپس جاؤں ہی نہیں نا کرسچنز میں. انہوں نے کہا نہیں، تم واپس چلے جاؤ، کل جب ہمارا امبیسڈر آئے گا نا जो कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु फिर अगले दिन आए, तो तुम उनके साथ वापस आ जाना, ठीक है। तो ये वाकया भी जंगे यरमूक से पहले हुआ, फिर उसके बाद जंगे यरमूक की एक्चुअली लड़ाई शुरू हुई, और उस लड़ाई के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। तो ये तो जंगे यरमूक का फैक्चुअल वाकया था। फिर जंगे यरमूक की थोड़ी सी बात फिर आखिर में भी आएगी दोबारा से। अच्छा, फिर इसके बाद मुसलमानों को प्रेटी मच पूरे शाम के ऊपर कब्जा मिल गया, और उसको फिर मुसलमानों ने यानी गवर्न करना शुरू किया, हैंडल करना शुरू किया शाम के इलाके को। और अबू उबैदा बिन जर्रा रतान जो है वो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, कोर्स शाम को मैनेज करने में। अच्छा, शुरू में दमिश्क के जो अमीर बनाए गए ना, वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला को बनाया गया, ठीक है, अमीर दमिश्क। लेकिन फिर बाद में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जो के अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने पैगाम भेजा कि खालिद आप जो है ना वो अबू उबैदा को चार्ज दे दें और आप जो है वो वापस आ जाएं, ठीक है। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला जो है उन्होंने मुसलमानों से कहा कि तुम लोग खुश हो जाओ कि अमीनु हाजहिल उम्मा अबू उबैदा, जिनको नबी रसूल ने फरमाया था कि ये इस उम्मत के अमीन है, उनको तुम्हारे ऊपर अमीर बनाया गया है, ठीक है। ऐसे बात करी ना लोगों के सामने कि अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए, तो उसके बदले में अबू उबैदा रतान उन्होंने भी फरमाया कि तुम लोग भी कितने खुश नसीब थे कि खालिद को जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने सैफुल्लाह का लकब दिया था, अल्लाह की तलवार का लकब दिया था, ठीक है। तो उन्होंने भी तारीफ करी, इन्होंने भी तारीफ करी, और फिर ये चेंज ऑफ गार्ड्स हो गया और अबू उबैदा बिन जर्रा रतान को दमिश्क का अमीर बना दिया गया। उन्होंने बहुत अच्छे से जाहिर उस जगह को हैंडल किया, और वहां के लोगों में भी बहुत अच्छा असर हुआ। बहुत से अरब कबीले वहां पे रहते थे जो कि वहां पे पहले से रहते थे, और वो क्रिश्चियंस के दरमियान रहते रहते वो भी क्रिश्चियंस हो गए थे, ठीक है। तो अरब क्रिश्चियंस भी वहां पे रहते थे और रोमन क्रिश्चियंस भी वहां पे रहते थे, और जो ओरिजिनल सीरियन क्रिश्चियंस थे वो भी वहां पे रहते थे, ठीक है। तो ये तीनों तरह के क्रिश्चियंस थे, अरब क्रिश्चियंस, रोमन क्रिश्चियन से मुराद ये जो कि रोम से आए थे, यानी ग्रीस से, और जो है वो यानी यूरोप के इलाकों से आए थे, वो रोमन क्रिश्चियन कहलाते थे। तो अरब क्रिश्चियन जो है ना, ये तो खालिद बिन वलीद ने इनमें बाकायदा दावत और तबलीग की मेहनत शुरू करी, वो तो सारे के सारे मुसलमान हो गए, ठीक है। और जो बाकी क्रिश्चियन थे उनमें से भी काफी सारे जो है वो मुसलमान हो गए, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा जो तर्जे के दिन मौजूद थे, हमने आपको बताया था ना कि क्रिश्चियंस की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुसलमान हो गई थी, जो कि सीरिया और इजिप्ट वगैरह के इलाके में रहते थे, ठीक है। जो यूरोप में रहते थे उनमें से तो बहुत कम मुसलमान हुए, बाद में जाकर के यूरोप के अंदर भी इस्लाम फैला, और ये फैलते फैलते जो है ना, ये यानी इवन ईस्टर्न यूरोप, जो आजकल ईस्टर्न यूरोप कहलाता है, अल्बेनिया, अल्बेनिया का जो कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री है, हालांकि इट्स पार्ट ऑफ यूरोप, इट्स बिल्कुल इन द मिडल ऑफ यूरोप, अल्बेनिया वो पूरा का पूरा मुसलमान मुल्क है। फिर उसके बाद दूसरा एक बहुत बड़ा मुल्क था यूगोस्लाविया, जो कि फिर ब्रेक हो गया तीन कंट्रीज के अंदर, उनमें से एक कंट्री यानी 1/3 ऑफ यूगोस्लाविया वो बोस्निया बना। तो बोस्निया जो है ये 100% मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। 100% तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इट इज अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, ठीक है। उसी तरह से और भी एक कंट्री है जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जो के मुस्लिम कंट्री है,
तो
हाँ कोसोवो जो है वो एक्चुअली कंट्री नहीं है, वो एक प्रोविंस की फॉर्म है उसके नाम, ठीक है। लेकिन एक और है, ऑस्ट्रिया तो नहीं, एनीवे तो यानी इस्लाम जो है ना वहां तक फैला। इस कंट्री का नाम, उसका एक बंदा था मेरा अच्छा खासा दोस्त भी बन चुका था वो, अच्छा था। तो इस्लाम जो है वहां तक बाद में जाकर के फैला, लेकिन वो बहरहाल छोटे छोटे एरिया से, जो मेजर यूरोप था वो मुसलमान नहीं है। अल्जीरिया अफ्रीका के अंदर है, यूरोप के अंदर नहीं है, बोस्निया की बात हो चुकी है। खैर एनीवे, तो अबू उबैदा बिन जर्रा की मेहनतों से जो है ना फिर सीरिया के अंदर भी बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, जो कि नॉन अरब्स भी थे। अच्छा, लेकिन मेजोरिटी चूंकि अरब्स के पास ही थी और हुकूमत अरब्स के पास ही थी, तो इस वजह से जो क्रिश्चियंस रहते भी थे ना वहां पर, तो वो भी अरबी ही बोलना शुरू हो गया। इस वजह से अब जो सीरिया है पूरा का पूरा, चाहे फलस्तीन हो, लेबनान हो, वहां पे इवन नॉन मुस्लिम्स भी अरबिक बोलते हैं। आज भी लेबनान के अंदर एक मेजर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी नहीं है लेकिन एक मेजर क्रिश्चियन पॉपुलेशन लेबनान के अंदर है, लेकिन वो भी अरब ही कहलाते हैं क्योंकि सभी ने अरबिक बोलनी शुरू कर दी। कोसोवो स्मॉल कंट्री इन यूरोप हैज 93.8% मुस्लिम पॉपुलेशन। कोसोवो एज अच्छा, आपने कटिनन सर्च करके जवाब दिया होगा या लिखा होगा यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि कोसोवो भी जो है ना वो एक स्मॉल कंट्री ही के तौर पर अब एग्जिस्ट करता है। या ये यूगोस्लाविया के ब्रेक है जो भी है, मुझे सही तरह से याद नहीं है। एनीवे, कोसोवो मुस्लिम्स, बॉस्नियन मुस्लिम्स, इन लोगों की बड़ी बहुत ही बुरी हिस्ट्री है। अभी 1990s के अंदर इनको बहुत ज्यादा जो है ना वो मारा गया था। एनीवे, तो अब उबैदा बिन जरार जो है वो वहां पर अमीर बन गए दमास्कस के अंदर, दमिश्क के अंदर। फिर उसके बाद एक आखिरी अटेम्प्ट जो है वो क्रिश्चियंस ने दोबारा किया, और उन्होंने बहुत मेजर फोर्सेस जो है ना वो आर्मेनिया वगैरह के क्रिश्चियन, आर्मेनिया ये कहाँ पर है, सेंट्रल एशिया के अंदर, ठीक है, तो टर्की का जो मुल्क है ना इसके ईस्ट में ये आर्मेनिया, आजरबाइजान, ये सब कंट्रीज आते हैं। तो आर्मेनिया बेसिकली एक क्रिश्चियन कंट्री है। तो रोमन एम्पायर ने आर्मेनिया से क्रिश्चियन आर्मी को बुला करके फिर यहाँ पे दोबारा से अटैक किया मुसलमानों के ऊपर, ठीक है। तो इधर मुसलमानों ने भी हजरत अबू उबैदा बिन जरार ने भी हजरत उमर फारूक खतान को लिखा, और वहां से बहुत अच्छी खासी जो है ना वो मुसलमानों को हेल्प में आर्मीज भी भेजी गई, और इस तरह से इनका मुकाबला हुआ और क्रिश्चियंस को जो है वो उसमें भी शिकस्त हुई और उनको बिलाखिर जान बचा करके वहां से भागना पड़ा। और फिर पूरा का पूरा सीरिया जो है शाम का जो इलाका है वो मुसलमानों के हाथ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक बात ये बतानी थी कि 18 हिजरी का ये साल था, 18th year of हिजरा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें फिर मदीना मुनव्वरा में बहुत बड़ा कहत पड़ा, बल्कि पूर्व अरब के अंदर कहत पड़ा, ठीक है। खाने पीने की चीजें जो है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो फिर जमीन से कुछ भी नहीं उगता, और फिर खाने पीने के सामान जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाता, तो इसको कहत कहते हैं, ठीक है, फेमिन, FAMINE अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शाम से 4,000 ऊंटों के ऊपर गल्ला यानी खाने पीने की चीजें, ग्रेन्स और ये सब लाद करके जो है वो अरब में हेल्प के तौर पर भेजे, ठीक है। अच्छा, ये भी 18 हिजरी में हुआ, अरब के अंदर कहत का मामला। और 18 हिजरी के अंदर ही फिर शाम के जो मफतूहा इलाके थे, मेनली बैतुल मुकद्दस से ईस्ट में जो शाम के इलाके थे, तो यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक किस्म की प्लेग स्टार्ट हुई, ठीक है। इसको ताऊन कहते हैं उर्दू के अंदर। बेसिकली ये इन्फेक्शन होता है, और मैं अपनी कम डॉक्टरी, ज्यादा डॉक्टर नहीं झाड़ूंगा, लेकिन इतना मुझे पता है ये वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये इट्स नॉट लाइक क्या कहते हैं कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस की तरह की कोई चीज नहीं होती, वो वायरल इन्फेक्शन होता है। जैसे फ्लू भी जो है ना ये वायरल इन्फेक्शन है, प्लेग जो है ये somehow शायद बैक्टीरियल, डॉक्टर साहब के बेटे बैठे हैं आपके पास, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गालबन आएगा, ठीक है। इससे जो है ना वो बदन आपके जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं कोई ट्यूमर पैदा हो जाता है, ठीक है, गिल्टी उसको उर्दू में कहते हैं, और वो ट्यूमर जो है ना वो इतना पॉइजनस होता है कि उससे बिलाखिर कि आपकी मौत हो जाती है, ठीक है। जब कोरोना वायरस दुनिया में फैला ना तो लोगों ने कहा कि ये कोरोना तो मदीना मुनव्वरा में भी फैल गया, वहां पे भी पहुंच गया, ठीक है, पता नहीं पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था वो तो और बात है, लेकिन पहुंच गया, वहां पे भी सब कुछ बंद कर दिया। तो लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मदीना मुनव्वरा में ताऊन नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर उलमा ने जवाब दिया कि भाई ये जो है ना, इसको ताऊन नहीं कहा जाता, ये प्लेग वाली बीमारी नहीं थी कोरोना वायरस, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये दूसरी किस्म की बीमारी होती है। तो बहरहाल, तो ताऊन अमवास उसको कहते हैं, आयन से अमवास, ये फैला। और इसके अंदर जो है ना, फिर इवेंचुअली तो बहुत ज्यादा लोगों की शहादत हुई। ताऊन से भी मौत अगर हो जाए तो नबी रसूल ने फरमाया कि ये भी शहादत की मौत होती है। ठीक है, अच्छा, जब ताऊन फैला ना, तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ा एक मेजर क्राइसिस क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला बाकायदा मदीना मुनव्वरा से यहाँ पर तशरीफ लाए, ठीक है, मकाम सरा तक पहुंचे, और वहां पे पहुंच करके फिर उन्होंने अबू उबैदा बिन जर्रा तआला, उन्होंने इनका इस्तकबाल भी किया, उमर फारूक तआला उनका। और उमर फारूक तआला उन्होंने फिर जब ये देखा कि भाई ये इतना तो फैल रहा है, लोग मर रहे हैं इससे, तो उन्होंने फिर सहाबे कराम से मशवरा किया, मुहाजरीन और अंसार सहाबे से मशवरा किया, सबने मुख्तलिफ किस्म की राय दी। फिर उमर फारूक हजरत ने बहुत ही सीनियर जो सहाबत है ना, उनसे मशवरा किया, जो कि काफी बड़ी उम्र के सहाबत है, उन सब से मशवरा किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें जो है ना, वो इमीडिएटली यहां से निकल जाना चाहिए इस इलाके से, ठीक है, इससे पहले के और लोग इसका शिकार हों, वी शुड लीव दिस प्लेस। ठीक है, तो उमर अतान ने फौरन फिर ऐलान करवा दिया कि मैं तो कल सुबह ना वापस जा रहा हूँ, और बाकी सब लोग भी जो है ना मेरे साथ वापस चले। ठीक है, तो अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हों ने जवाब दिया कि तुम अल्लाह की तकदीर से भागते हो उमर, भाई अल्लाह का फैसला है, हम इस जगह को छोड़ के, हमने पता किया, अल्लाह ताला ने हमें ये जगह दी, ठीक है, हम सबको छोड़ छाड़ करके, इसलिए कि भाई अगर बीमारी लग गई तो अल्लाह की मर्जी होगी तो बीमारी लगी, नहीं होगी तो नहीं बीमारी लगेगी। ठीक है, तो तुम तकदीर इलाही से भागते हो, इस तरह की बात इन्होंने करी, क्योंकि ये जरा ना हर एक अपना मिजाज होता है ना, तो इनका मिजाज ऐसा था कि नहीं, मतलब तो बस जो अल्लाह का फैसला है वही, उसके ऊपर ना। उमर अजान जो है वो दूसरे मिजाज के स्टेट्समैन थे, स्टेट्समैन पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो दूसरे के मिजाज का होता है। तो उन्होंने फरमाया कि अबू उबैदा, काश के ये बात तुम्हारे अलावा कोई और कहता, ठीक है, क्यों, इसलिए कि उमर फारूक रजान जो है ना, ये अबू उबैदा रजान की किसी बात को ना वो चैलेंज नहीं करते थे, उसका इनकार नहीं करते थे, वो उनके कमांडर इन चीफ थे उमर अतान की आर्मी के। ठीक है, तो अगर अमीर सल्तनत जो है वो कमांडर इन चीफ के साथ, हमारे मुल्क को तो चक्कर चलते रहते हैं तमाशे, ठीक है, लेकिन वहां तो नहीं चलते थे ना ये वाले तमाशे, तो अगर इन दोनों के दरमियान ही जो है वो डिसएग्रीमेंट वगैरह शुरू हो जाए तो ये तो बहुत ही गलत बुरी बात होगी। तो उन्होंने कहा कि काश कि तुमने ये बात ना करी होती, किसी और ने बात करी होगी ना, तो उसको तो मैं सीधा कर देता, वो तो जिस तरह करते हुए। तो बहरहाल, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तकदीर इलाही से भागता हूं तकदीर इलाही की तरफ। ठीक है, यानी इस तरह से जवाब दिया कि उनकी बात भी रद्द ना हो और अपनी बात भी बड़ी गहरी बात उन्होंने कर दी। ठीक है, कि मैं तकदीर इलाही से भागता हूं, लेकिन भाग के मैं जहां जाऊंगा ना, वहां पर भी तो तकदीर इलाही होगी। ठीक है ना, ये कोई थोड़ी है कि वहां पे अल्लाह की तकदीर जो है वो नहीं होगी, मैं इधर से भाग के उधर पहुंच जाऊंगा। भाई मौत आनी है तो वो तो मदीना मुनव्वरा में भी आएगी, वो तो रास्ते में भी आ सकती है। ठीक है, तो मैं तो बस मशवरे पे अमल कर रहा हूं, बल्कि एक जगह पे ये भी लिखा कि हदीस में भी, क्योंकि ये आया था कि जहां पे ताऊन जैसी बीमारी कोई फैल जाए ना, तो वहां से जो बाहर है वो अंदर ना जाए और जो अंदर है वो बाहर ना आए। ठीक है, तो ये भी कोट किया रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम की जब ये बात है, तो अब जो है ना, वी शुड नॉट एंटर दोस प्लेसेस जहां पर के ये ताउन आया हुआ है, मैं उस वजह से जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो अल्लाह का फैसला है वो तो फिर भी होकर के रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने फिर और भी ज्यादा गहरी बात करी, आखिर को उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। बहरहाल, तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जो है ना, वो मदीना मुनव्वरा वापस आ गए, लेकिन आखिर को उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो हार तो उन्होंने माननी नहीं थी। ठीक है ना, तो उन्होंने ना वहां पे जाकर के खत लिखा अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को, अबू उबैदा मुझे तुमसे कुछ काम है, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तुम आ जाओ, छोड़ छाड़ के मदीना मुनव्वरा आ जाओ। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु समझ गया कि नहीं, ये जाना वो उसी चक्कर में मुझे वहां से, हम यहाँ से निकालना चाहते हैं कि भाई ताऊन की बीमारी है, मैं उसमें कहीं मारा ना जाऊं। उन्होंने कहा कि नहीं उमर, मैं यहां से नहीं चलूंगा। ठीक है, तो इस मामले में जो है ना, उन्होंने अमीर मुमलिकत से एक्सक्यूज कर लिया कि नहीं, बाकी मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, ये बात मैं आपकी सॉरी नहीं मान सकता। बड़े तमीज के साथ बोला ना कि सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो ये अदब तमीज के साथ जो है, वो कोई ऐसी बात हो जिसके ऊपर आप उसूली तौर पर और हक के साथ अपने आप को हक में समझते हुए कायम रहते हैं, तो ऐसे अदब तमीज के साथ बात करी जा सकती है। ठीक है, तो इनके पास अपना ईमान का अलग दर्जा था, इन्होंने इस बेसिस के ऊपर उमर फारूक रतारा से एक्सक्यूज कर लिया कि मैं यहां से नहीं टल सकता। उमर रतारा ने देखा कि भाई ये तो जो है ना, वहां से टलने का नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने फिर इनको मैसेज भेजा कि भाई फिर तुम ऐसा करो कम अज कम कि जिस जगह पे अभी तुम लोग हो ना, तो ये बहुत ही नशेबी जगह है। नशेबी कहते हैं कि यानी सरफेस लेवल से नीचे है, गहराई है, जैसे वादी वगैरह होती है, और वहां पे पानी है। ठीक है, तो पानी के अंदर आपको पता है कि डिजीजेस जो होती है ना, वो ज्यादा तेजी से फैल सकती है। ठीक है, तो तुम इस जगह से जो है ना, वो किसी खुली और बाफ बाफ फजा किस्म की जगह के ऊपर तुम लोग मुंतकिल हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने फिर अपनी आर्मी को लिया और वहां से जो है ना, वो एक ऊंची जगह थी जाबिया, वहां पे चले गए हजरत मूसा, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु की सिफारिश के ऊपर, उनके यानी राय के ऊपर ये जाबिया के मकाम के ऊपर मूव हो गए। लेकिन तकदीर इलाही होती है, वहां पे पहुंचते ही इनको लग गई वो प्लेग। ठीक है, और इनकी तबीयत जो है वो खराब होनी शुरू हो गई। जब मर्ज की शिद्दत हुई तो इन्होंने फिर हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला, जो इनके साथ साथ होते थे और गोया के इनके सेकंड यानी इन कमांड थे, तो उनको जो है ना, इन्होंने अपनी जगह पे अमीर बनाया। उनका कि भाई अब देख रहे थे ना, इतने लोग जो भी इसका शिकार होता है वो चला जाता है दुनिया से। इन्होंने मुआज बिन जबल रजी उनको बना दिया, और नमाज का वक्त हुआ तो फरमाया कि आप ही नमाज पढ़ाएं। तो मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे तो उसके फौरन बाद ही इनका इंतकाल हो गया। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु इस दारे फानी से ऐसे ही कूच कर गए। ठीक है ना, फातेह शाम जी
काम का नाम था
जाबिया। ठीक है, तो इधर नमाज खत्म हुई, उधर राजी बरजाए इलाही यानी अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत ने दाई हक को लबैक कहा। हजरत मुआज बिन जबल रजील तआला अन्ह ने तजहीज व तकफीन का सामान किया, उनके यानी उनके दफन वगैरह का सामान किया, नमाज जनाजा वगैरह का, और हाजरीन के सामने एक मुअस्सर पुर दर्द तकरीर के बाद कहा कि साहिबों, आज तुम में से एक शख्स ऐसा उठ गया कि खुदा की कसम मैंने इससे ज्यादा साफ दिल, बेकीना, सैर चशम, आकिबत अंदेश, बाहया और खैर ख्वाह खल्क कभी नहीं देखा। पस खुदा से उसके लिए रहमत और मगफिरत की दुआ करो। ठीक है, तो ऐसे ये थे कि इनके जाने के बाद हजरत मुआज बिन जबल अजान जैसे फर्द ने जो है ना, वो गवाही दी कि मैंने इनसे ज्यादा जो है ना, वो खैर ख्वाह और नेक नियत आदमी, यानी जिसके दिल में किसी के लिए कोई खराबी ना हो, कोई यानी जाहिर है इनसे बढ़ के नबी अलैहिस्सलाम थे, इनसे बढ़ के जो है वो अबू बकर सिद्दीक रतान थे, इनसे बढ़ के उमर फारूक रतान थे। ठीक है, लेकिन जब किसी का इंतकाल होता है ना, तो उसकी याद में, उसकी तारीफ में ऐसे कलमात इंसान कहता है जो कि उस पर कम अज कम उस पर तो पूरे होते ही हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह की बात कर देते हैं कि मैंने इनसे ज्यादा कभी, इससे ज्यादा कोई मैंने साफ दिल, बेकीना, सैर चशम, बाहया और खैर ख्वाह खल्क बंदा नहीं देखा। इनके इंतकाल किए बात पढ़ के, अब बस एक चीज जो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके बयान, इनके बारे में जो बयान किया था, उसमें आखिर में फरमाई थी कि ये जो जंगी यरमूक का वाकया हुआ ना, तो फैक्चुअल तो हमने आपको बता दिया, बाकी इमोशनल पार्ट भी इसका बता देते हैं जो कि हमारे हजरत ने फरमाया था। तो फरमाया कि जंगे यरमूक का जो वाकया हुआ था ना, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में ईसाइयों की फौज आई थी, 1 लाख से ज्यादा थे। हमने पढ़ा भी था कि गोया के टड्डी दल फौज आई थी ना, जैसे कि लोकस्ट होते हैं ना आसमान के ऊपर की रोशनी जो होती है वो छुप जाती है, इतने लोकस्ट होते हैं, इतनी बड़ी फौज उनकी आई थी। तो यहाँ पे मुसलमान कितने थे, 30,000 थे खाली। तो उस वक्त जो है ना, जब ये फौजें आमने सामने आ चुकी थी, तो एक मुसलमान नौजवान सिपाही, ठीक है, वो आया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने, ठीक है। तो उसके और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जो मुकालमा हुआ ना, जो कॉन्वर्सेशन हुई, इसको हजरत शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने इन शेरों के अंदर बयान किया, ठीक है। तो फरमाया कि सफ बस्ता थे अरब के जवानान तैगबंद, कि अरब के जो ये नौजवान थे, जवान थे, ये तलवारें इन्होंने जो है ना वो पहनी हुई थी और सफें अपनी बनाई हुई थी मुंतजर हिना की उरूसे जमीन शाम, ठीक है। ये जमीन शाम जो थी ना, सरजमीन शाम, ये गोया कि एक दुल्हन जैसी थी जो कि बैठी हुई थी कि उसको आकर के मेहंदी लगाई जाए, ठीक है, दुल्हन को मेहंदी लगाई जाए, दुल्हन बैठे हुए इंतजार कर रही थी। क्या मतलब? मेहंदी जो होती है ना, वो असल अच्छी मेहंदी जो होती है वो सुर्ख रंग की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल जो है वो खून को मेहंदी से तशबीह दे रहे हैं कि अभी जो है ना वो खून बहेगा, तो गोया के सरजमीन शाम, शाम की जमीन जो है वो खून से लाल हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी, गोया के उसको मेहंदी लगने वाली थी और वो अभी इंतजार कर रही थी। सब बस्ता थे अरब के जवानान तैगबंद, ही मुंतजर हिना की उरूसे जमीन शाम, एक नौजवान सूरते सीमा बे मुस्तरब, सूरते सीमा बे मुस्तरब। सीमा किसको कहते हैं, किसी को बताओ? अब बातें खत्म करेंगे तो आप जवाब देंगे ना, सीमा किसको कहते हैं? घर में थर्मामीटर है आपके, जब बुखार होता है तो थर्मामीटर, आजकल तो वो आ गया ना यहाँ पे करते हैं, तो वो इस वजह से पता नहीं चलता, तो मुंह में जो थर्मामीटर डालते हैं ना, तो उसमें उसके एंड में जो है ना वो एक ग्रे किस्म की चीज लगी हुई होती है, उसको मर्करी कहते हैं, ठीक है, उसको उर्दू में पारा भी कहते हैं, तो सीमाब, ठीक है। तो वो जो मर्करी होती है ना, हम जब छोटे थे तो हर थोड़े दिन के बाद वो थर्मामीटर तोड़ देते थे ना, वो टूट जाता था, बस किसी बच्चे के हाथ में आया वो गरा वो करके टूट गया। जब वो टूटता था ना, तो उसका जो वो एंड होती थी ना ग्रे वाली, तो वो उसके ऊपर से शीशा तो टूट जाता था, अंदर से वो मरकरी बाहर आ जाती थी। अब मरकरी का बाहर आ जाना ये हमारे लिए एक बड़ा मजे का काम होता था, क्योंकि उसको जो है ना आप जरा से यूं करें उधर से भागता था वो हर वक्त फुदकता रहता था, ठीक है ना, वो चैन से नहीं बैठता था वो सीमा, ठीक है, तो वो फुदकता रहता था, हमें बड़ा मजा आता था उसके साथ खेलने में। फिर उसके टुकड़े हो जाते थे, तो टुकड़ों को करीब लाते तो एकदम से हो जाए वो मर्ज हो जाता था आपस में, ठीक है। तो ये सीमाब जो है ना, उसको कहा जाता है कि जो कि इत्मीनान से नहीं बैठता, बल्कि उसके अंदर एक इज़तिराब होता है, ठीक है, यकसू होता है कोई ये ना समझे कि इज़तिराब का मतलब ये है कि कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, नहीं, इज़तिराब का ये मतलब नहीं है। वो होता तो यकसू है, लेकिन हर वक्त काम करता है अपने बड़ों के लिए, ठीक है ना, फारिग नहीं बैठा रहता, सोता नहीं रहता, टाइम ज्यादा नहीं ट्राई नहीं करता, बल्कि काम करता रहता है और बड़ों की दुआएं लेता रहता है, ठीक है। तो ऐसा सीमा, तो एक नौजवान आया जो कि ऐसा नौजवान था, ठीक है, बसूरत सीमा बे मुस्तरब, आकर हुआ अमीर असाकर से हम कलाम। असाकर आर्मीज को कहते हैं, जो आर्मीज के अमीर साहब थे उनसे आकर के उसने बात करी, ए अबू उबैदा रुख्सते पैकार दे मुझे, ए अबू उबैदा आप मुझे इजाजत दें कि मैं जाऊं और उनको ललकारूं, इन रोमन्स को, ठीक है, ए अबू उबैदा रुख्सते पैकार दे मुझे, लबरेज हो गया है मेरे सब्रो सुकून का जाम, ठीक है, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मेरा सुकून सब्र का जो पैमाना है ना वो लबरेज हो गया है, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, कि मैं इधर बैठा रहूं और इंतजार करता हूं कि कब मेरी शहादत आएगी, बेताब हो रहा हूं फिराक रसूल में, बेताब हो रहा हूं किसमें, नबी अलैहिस्सलाम के फिराक में, ठीक है। 18 हिजरी, तो नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए हुए 5 साल तकरीबन, ठीक है, तो मैं उस वक्त से इंतजार कर रहा हूं कि कब मैं अपने आका से जाकर मुलाकात करूंगा ना, तो बेताब हो रहा हूं फिराके रसूल में, एकदम भी जिंदगी की मोहब्बत में है हराम, जिंदगी की मोहब्बत तो मेरे ऊपर हराम है, मैं एकदम यानी एक सांस मजीद नहीं ले सकता इस जिंदगी की मोहब्बत में। ठीक है, ये हाल था दुनिया की मोहब्बत जो है ना, वो इन लोगों से ऐसी रुखसत हुई थी कि इन लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया था, हमारे लिए मरना मुश्किल होता है ना। मरने की बात सुनते हैं तो कहते हैं यार क्या वो मुरन मुरन लगा रखी है तुमने क्या ये मौत की बात है, फिर लेकर के आ जाते हो। तो उनके लिए जीना मुश्किल था। ठीक है, तो एकदम भी जिंदगी की मोहब्बत में है हराम, बेताब हो रहा हूं फिराक़े रसूल में, जाता हूं मैं हुजूर रिसालत पनाह में, ले जाऊंगा खुशी से अगर हो कोई पयाम। मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना रिसालत की के पास जा रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको कोई पैगाम पहुंचाना है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है ना, आई कैन बी योर मैसेंजर। सही है, क्या यकीन था ये शहादत, और उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात, ये पक्की है, शक में नहीं थे इस बारे में। तो जाता हूं मैं हुजूर रिसालत पनाह में, ले जाऊंगा खुशी से अगर हो कोई पयाम, ये जौक शौक देख के पुरनम हुई वो आंख। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा की आंखों में आंसू आ गए इस नौजवान का जौक शौक देख करके, जिसकी निगाह थी सिफत तैग बेनयाम। अबू उबैदा बिन जर्रा की आंखें ऐसी थी कि गोया के बेनयाम तलवार की सिफत थी उसके अंदर। ठीक है ना, यानी आप रजी अल्लाह तआला की आंखों में तलवार थी जिसके ऊपर कोई कवर भी नहीं चढ़ा हुआ हो, अनहुडेड सोर्ड, ऐसी आंखें तो अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला की, लेकिन उन आंखों में भी इसको देख करके आंसू आ गए। ठीक है, बोला अमीर फौज कि वो नौजवान है तू, बूढ़ों पे तेरे इश्क का वाजिब है एहतराम। तू ऐसा नौजवान है कि तेरे इश्क के ऊपर तो बूढ़ों को भी जो है ना वो एहतराम करना चाहिए तुम्हारे इश्क का। ठीक है, पूरी करे खुदाई मोहम्मद तेरी मुराद, पूरी करे खुदाए मोहम्मद तेरी मुराद, कितना बुलंद तेरी मोहब्बत का है मुकाम। कि अल्लाह ताला जो नबी अलैहिस्सलाम का खुदा है, वो तुम्हारी इस मुराद को कि तुम नबी अलैहिस्सलाम से मिलने की तमन्ना रखते हो, इसको अल्लाह ताला पूरा कर दे, और कितना मोहब्बत है, कितना बुलंद है तुम्हारी मोहब्बत का ये मुकाम। पहुंचे जो बारगाहे रसूले अमी में तू, करना ये अर्ज मेरी तरफ से बसद सलाम, 100 सलाम भी देना नबी अलैहिस्सलाम को मेरी तरफ से, और उनकी खिदमत में मेरी तरफ से ये पैगाम भी अर्ज कर देना, हम पर करम किया है खुदाए गयूर ने, पूरे हुए जो वादे किए थे हुजूर ने। नबी अलैहिस्सलाम हमसे ये वादे करके गए कि हमको दुनिया में भी कामयाबियां मिलेंगी और ये सारी जमीन जो है ना ये हमारे कब्जे में आ जाएगी। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने हदीसों में भी वादे किए थे, और कुरान मजीद के अंदर सूरह अहजाब के अंदर जो वाकये अहजाब है उसके अंदर क्या है वो आयत, लम यतम, जिसके जो वो इलाके भी तुम्हें मिलेंगे कि जिनको के अभी तुम पहुंचे भी नहीं हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने वादे किए थे और सहाबा कराम ने उन वादों पे पक्का एतमाद किया था, ईमान लाए थे, और अल्लाह ताला ने फिर इनमें से सबको तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे शहीद हो गए, दुनिया से चले गए, लेकिन जो बाकी थे तो उनको अल्लाह ताला ने दिखाया कि देखो मैं अपने वादे को पूरा करता हूँ। तो फरमाए कि यानी आपने जो वादे फरमाए थे, वो वादे हमने अपनी आंखों से पूरे होते हुए देखे हैं, मुख्तलिफ ममालिक फतह हो चुके थे और इस्लाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पर पहुंचा दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के हबीब, आपने जो वादे फरमाए थे हमने उन वादों को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम सहाबे कराम को अपने दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इनके जाहिर और बातिन के मुताबिक अपने जाहिर और अपने बातिन को बनाने की मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। कम से कम तड़प तो हो ना, ठीक है, कम से कम चाहत तो हो, तो चाहत होगी तो जैसे कल भी आपने सुना था, जिस चीज की चाहत होती है ना, फिर बंदा ना सिर्फ उसके लिए मेहनत करता है बल्कि उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगता है। ठीक है। और जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो फिर अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको वो चीज दे देते हैं बल्कि वहां तक पहुंचने का तरीका भी बता देते हैं और उस तरीके के ऊपर चला भी देते हैं। सब काम अल्लाह ताला करते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ हमारी तलब देखना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ हमारी मोहब्बत, हमारा जज्बा, ठीक है। तो कम अज कम हम अब ये मोहब्बत और जज्बा तो कम अज कम हम पैदा कर लेना, बाकी तो पकी पकाई खीर अल्लाह ताला ने हमें दे देनी है, ठीक है, और बाकी सारे काम अल्लाह ताला हमसे करवा देंगे। लेकिन तलब और जज्बा जो है वो हमारे बड़े फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला देखना चाहते हैं। बेतलबी, हजरत जी फरमाया करते थे, बेतलबी और खुदा तलबी ये एक साथ जमा नहीं हो सकते। एक बंदा कहे कि मुझे तो अल्लाह ताला चाहिए लेकिन उसके अंदर कोई तलब ही ना हो, ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो एक साथ हो ही नहीं सकती। तलब हमने पैदा करनी है, अल्लाह ताला ने बाकी सारे काम हमारे लिए आसान कर देने हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्ना अल्लाह लमा अल मुहसिनीन وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What is conventional? أتشا.
Recording stopped.
Thank you.